له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من مرد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اس عالم کو اس کی جو اصل حقیقت ہے اور اس کی اصل خصوصیات ہیں ان کی طرح اس نے واضح اشارے کیے ہیں شروع میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر بھی ہیں جو زیادہ گہرائی سے نہیں دیکھتے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھو کس طرح پہاڑوں کو دیکھو درختوں کو دیکھو کس طرح یہ پیداوار ہوتی ہے کس طرح چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اور کس طرح چاند و سورج گردش کر رہے ہیں یہ کھلی حقیقت ہے جو ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا ایسا نظام محکم نظام ہے کہ ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا اس کو یہ کہہ کے ٹال دینا کہ یہ اتفاقی ہے ہر چیز اتفاقی کیا مطلب ہوتا ہے کیسے وجود میں آ گئی کیسے یہ ٹھیک چل رہی ہے کیسے آپس میں ٹکرا نہیں جاتی کیسے اس کے اندر اختلاف نہیں ہوتا بچہ پیدا ہو رہا ہے آج ہزاروں سال سے ایک طرح پیدا ہوتا ہے ایک طرح بنتا ہے نطفہ ایک طرح نسل ترقی کرتا ہے پھر اندر سارا نظام چلتا ہے یہاں نہ کسی ڈاکٹر کو دخل ہے نہ کچھ ماں باپ کو دخل ہے ماں بھی نہیں جانتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے باپ کو بھی کوئی اختیار نہیں حتیٰ کہ ڈاکٹر کو بھی کوئی اختیار نہیں وہ بھی زیادہ نہیں جانتا کس طرح ایک پانی کا قطرہ پانی جیسے جس کا قطرہ ترقی کر کے گوشت بن جاتا ہے ہڈی بن جاتی ہے اور پھر وہ ایک نظام سے وہ ترقی کرتا ہوا باہر آتا ہے جس طرح پودا ہے ایک چھوٹا سا بیج وہ آپ زمین کے اندر آپ نے ڈال دیا پانی مل گیا اس کو اور وہ چھوٹا سا بیج کس طرح پھوٹتا ہے کس طرح وہ ترقی کرتا ہے اور پھر اس کے جو اثرات ہیں اس چھوٹے سے ایک بیج میں وہ اثرات کتنے گہرے اور کتنے اہم ہیں کہ جو بڑھ کر ایک تناور ذرہ بن جاتے ہیں اور ایسا تناور ذرہ بنتے ہیں کہ وہ بیج کے دوسرے درخت سے ملتا جلتا بھی ہے لیکن اس سے اختلاف بھی رکھتا ہے اس ایک چھوٹا سا بیج اس سے کیسے ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ایک نظام سے پیدا ہو رہی ہیں کبھی اس میں گڑبڑ نہیں ہوتا کبھی ایسا ہو ये नीम से अमरूद पैदा हो जाए, जामुन से आम पैदा हो जाए, कभी ऐसा नहीं आप सुनेंगे, कभी एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ। तो कैसे निजाम चल रहा है, ये जाहिरी चीजें हैं, जिसको देखो उसको समझो, और अगर गहराई से जाओ तो ऐसा अजीम निजाम है कि आदमी के तसव्वुर से बुलंद है। ये अल्लाह की नूरानियत पर चल रहा है, अल्लाह के नूर पर चल रहा है। अल्लाह की जात वो नूर है कि जो उसने पूरे निजाम को कायम कर रखा है, हर चीज अपने सीधे रास्ते पर चल रही है। जब रोशनी होती है तो चीज सीधे रास्ते पर जाती है, अंधेरा हो तो भटकती। तो ये निजाम कैसे चल रहा है, ये उस रोशनी से चल रहा है जो रोशनी अल्लाह ताला की तरफ से कायनात में फैल रही है। वो रोशनी है, उसको वो हमारी ये जो हम रोशनी देखते हैं, इस रोशनी से बहुत वो ऊंची है जिसको हम आसानी हम उसको देख नहीं सकते, उसके खवास नहीं है। रोशनी की खासियत जो हम रोशनी इस्तेमाल करते हैं, खासियत क्या है, रोशनी होगी तो हम चल सकेंगे, फिर सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे, हर चीज निजाम के मुताबिक चलेगी। अंधेरा है तो कोई चीज निजाम के साथ नहीं चल सकती। आप आगे बढ़ेंगे किसी से टकरा जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे, कुछ करेंगे, कोई काम ही नहीं कर सकते आप। तो रोशनी और जुल्मत को समझने की जरूरत है, मुतवज्जे करता है, समझो कि रोशनी और जुल्मत में क्या फर्क है। तुम तो जुल्मत के अंदर भटक रहे हो, अल्लाह रोशनी दे रहा है तुमको, उस रोशनी से तुम फायदा नहीं उठाते। आंख बंद कर ली तुमने, जैसे रोशनी तो खूब हो रही है, आदमी ने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके चल रहा है तो क्या होगा, वो होगा जो जो अंधेरे में होता है, उसके लिए वो रोशनी अंधेरा है, वो रोशनी उसके लिए रोशनी नहीं है, इसलिए आंखें बंद कर ली उसने। तो तुम अगर अल्लाह की उस रोशनी से अपना आंखें बंद कर लोगे तो क्या होगा, कहीं जाए गढ़े में गिरोगे या किसी चीज से टकरा जाओगे, सब टूट जाएगा तुम्हारा। तो ये निजाम जो चल रहा है सारी कायनात का और सारी दुनिया का, यही जुल्मात और यही रोशनी और अंधेरे का निजाम है। रोशनी अल्लाह के पास से आ रही है और वो पूरे निजाम को चला रही है, पूरा निजाम चल रहा है उस रोशनी की वजह से। चांद चल रहा है, सूरज चल रहा है, और सारा निजाम जो बना हुआ है बिल्कुल मोहकम निजाम, वो उस रोशनी से चल रहा है जो रोशनी अल्लाह की तरफ से आ रही है। रोशनी का मंजर कौन है, अल्लाह ताला है, अल्लाह की जात रोशनी का मीनार है, रोशनी का चिराग है। लेकिन वो चिराग ऐसा नहीं कि जो हम जलाते हैं, वो तो हमारे समझाने के लिए अल्लाह ने कहा कि देखो तुम बेहतर से बेहतर रोशनी वाला दिया जलाओ, उसकी चमकती हुई रोशनी जो जैतून के तेल से रोशनी आ रही है, जो तुम्हारे पास तुम्हारे इस्तेआज में जिससे ज्यादा बेहतर रोशनी हो नहीं सकती, उस रोशनी को सामने रखो और सोचो कि वो रोशनी कौन सी रोशनी होगी जो अल्लाह की तरफ से आ रही है। और मिसाल दी अल्लाह ने पूरे निजाम की मिसाल दे दी कायनात की, कि जैसे ताक हो और उसमें चिराग रखा हो, और चिराग जो है वो ऐसा खूबसूरत हो शीशे के मतलब ये नहीं जैसे शीशा हमारा शीशा ये शीशा है, नहीं, शीशे की खसूसियात जो है उसकी तरफ इशारा है। ये शीशा चमकता है और शीशे से जो हर चीज जाहिर होती है, बेहतरीन शीशे का चिराग, उसमें बेहतरीन तेल की और बत्ती की लो है, और उससे सारा दूर पूरा निजाम मुनव्वर हो रहा है। ये वो रोशनी है जो पूरे निजाम को ठीक से चला रही है। अब इस रोशनी से कोई आंख बंद कर लेता है तो राइट तबाह होगा, और उसका हवा हाल होगा जो समंदर में मौजों के ऊपर मौजों के ऊपर मौजे, अंधेरे पे अंधेरा, अंधेरे पे अंधेरा, और ऊपर से बादल जो बिल्कुल अंधेरा कर देता है। कि आदमी अपना हाथ निकाले तो हाथ दिखाई न दे कि हाथ किधर है, हाथ निकला कुछ उसको नजर ही नहीं आ रहा है हाथ है या नहीं। वाकई आप देखिए जो घटाटो अंधेरा होता है उसमें हाथ अंधी दिखाई देता है। तो ये मिसाल है ईमान और कुफर की। ईमान क्या है कि मानो इस चमक को, इस रोशनी को, इस नूरानियत को जानो कि जो तुमको तुम्हारे इस पूरे निजाम को चला रही है और वो पूरी तरह उस पर नजर रख रही है। और हाल ये है कि अल्लाह ताला ने जो जिसको ही पैदा किया है, जितनी मखलूकात हैं वो सब उस रोशनी से, उस नूरानी से फायदा उठा रही और शुक्रगुजार है, सब हर वक्त जिक्र में मशगूल है। लेकिन हर एक का जिक्र अलग अलग है, हर एक की तस्वीर अलग अलग है। इंसानों की तस्वीर हम जानते हैं, लेकिन परिंदों परिंदे तस्वीर किस तरह करते हैं और चौपाए किस तरह तस्वीर करते हैं और मखलूकात किस तरह, हर एक की जबान, जैसी जबानें अलग अलग होती हैं, आपकी जबान अमेरिका की जबान से मुख्तलिफ है। लेकिन आप क्या कहें, आपको अगर मालूम न हो कि यह फला मुल्क की जबान है तो आप ये कहेंगे वो बड़बड़ा रहा है, वो आवाजें निकाल रहा है, उसको आप आवाजें कहेंगे, आप उस जबान नहीं कहेंगे, ठीक है, आपको मालूम नहीं। तो जानवर जिस तरह तस्वीर करते हैं वो हम नहीं समझते, लेकिन वो उनकी जबान है। अल्लाह ने हर एक मखलूक की जबान यानी अदा करने का अंदाज, बात को अदा करने का अंदाज हर एक का अलग कर दिया है। हम इंसानों में जब फर्क है तो फिर मखलूकात के दरमियान क्यों नहीं फर्क होगा? जब हम एक मुल्क की जबान मुल्क की जबान से अलग है कि सुनने वालों का कि आवाजें निकाल रहे हैं कुछ, उसको हम लफ्ज भी नहीं कहेंगे, लेकिन फर्क है। तो फरमाया अलम तरअन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ्फात, कि क्या देखते नहीं तुम कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह ताला का जिक्र करती है, करते हैं वो सब जो आसमानों और जमीन में है, जो भी मखलूकात हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया वो सब जिक्र में है, यानी उनकी जिंदगी जिक्र में गुजर रही है। अल्लाह ने उनकी खिलकत ऐसी बनाई है कि वो जिक्र ही उनका अमल सारा जिक्र है। और परिंदे जो सब बसफ होते हैं वो भी जिक्र में मशगूल रहते हैं, वो जिक्र उनके अंदाज का जिक्र है, उनके मिजाज का। कुल उन कदर में फैला कर वो तस्बीह, हर एक ने अपनी नमाज और अपनी तस्बीह समझ ली है। सबको अलमा आलमों के मानने होते हैं कि हकीकत को जान लेना, इल्म कहते हैं, कुरान मजीद के यहाँ बयान किया गया है, इल्म कहते हैं हकीकत के जान लेने को। अगर हकीकत को नहीं जाना आपने तो वो जन है, वो गुमान है, वो अंदाज है, उसको जन कहते हैं, कहा गया है। और इल्म यहाँ है, इल्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो मतलब ये है हकीकत को जान लेना। कुल कद अलम सलात हो तस्बीह, हर एक ने अपनी जबान अपनी तस्बीह और अपनी नमाज, उसकी नमाज कैसे हो हमें नमाज मालूम है कि रुकू है, सीधा है और कौमा है, क्याम है, ऐसी नमाज बड़ी इसराइल की जबान की नमाज मुख्तलिफ थी। इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों की नमाज जो है इससे मुख्तलिफ थी। तो नमाज मतलब ये अल्लाह की सलात के असल माने दुआ के होते हैं। तो हर एक ने अपनी नमाज और अपनी तस्बीह यानी अपना जिक्र और अपनी इबादत हर एक ने समझ ली कि किस तरह बात है, यह समझ किस तरह ली है, हकीकत को जान लिया है। और जो हकीकत को कोई जान लेता है तो फिर उसके खिलाफ कर नहीं सकता, समझा। चाकू की नोक के सामने है, आपने देख लिया, आप जान गए कि ये नोक है, अब आप इस नोक से बचेंगे, बेहतियाती नहीं करेंगे तो हाथ नहीं रख देंगे, क्यों? इसलिए कि आप हकीकत से वाकिफ हो गए। हकीकत से वाकिफ होने के बाद हकीकत के खिलाफ आदमी कर ही नहीं सकता। शोला आदमी किसी तरह वो खंजर किसी तरह बढ़ाया जाए भागेगा, वो फौर ऐसा भागेगा, तेजी के साथ भागेगा, मालूम नहीं बदहवास हो गया, क्यों? इसलिए हकीकत को जान, तो हकीकत को जानना असल है। कुल्लुन कदर मसलात हो तस्बीह, हर एक ने अपनी नमाज अपनी इबादत और अपना जिक्र जान लिया है। यानी समझ गए हैं सब के, तो उसके खिलाफ वो कर नहीं सकते। लेकिन इंसान जो है वो अपने जन पर चलता है, आंखें बंद कर ली हैं और अंदाजे से कर रहा है। अरे बेवकूफ आदमी, रोशनी है, अल्लाह ने रोशनी दी है, रोशनी तूने आंख बंद कर ली और कहते हो हम अंदाजे से जाएंगे, जाओ अंदाजे से भुगतोगे, गिरोगे कहीं चोट खाओगे। कोई लड़का ये कहे, इंसान को कह लीजिए, कुछ कह लीजिए कि हम अंदाजे से अभी चले जाएंगे, ऐसे जाओ अंदाजे जो जो मरोगे। तो काफिर जो है जो अल्लाह की रोशनी का इनकार करता है और अल्लाह की रोशनी लेना नहीं चाहता, अल्लाह की रोशनी लेना नहीं चाहता, यानी क्या मतलब हुआ इसका, आंखें रोशनी से आंखें बंद कर लेना, चलो तुम्हें लेने में, तो फिर भुगतोगे, देखोगे फिर जब आखिरत आएगी और पहुंचोगे उस मंजिल पर जो आखिरत की मंजिल है, तो मालूम होगा कि तुम्हारा जो अंदाज था अंधेरे में चलने का, उसने कहां तुमको पहुंचाया, और जो रोशनी जो रोशनी आंख खोल कर चला, रोशनी से फायदा उठाया, वो कहां पहुंचा देखो, वहां पता चलेगा। तो मैं कुल्लुन फ़क़दाले मसला तो तस्बिया, हर एक ने यानी सारी मखलूकात जिनको आसमान जमीन में अल्लाह ने पैदा किया है, सब अपनी तस्बीह अपनी इबादत तो जिक्र को जानते हैं कि हमें ये जिक्र करना है, उससे वाकई उस हकीकत से वाकई है, इसलिए उस जिक्र से वो हट नहीं सकते। अल्लाह वालियों में माए फलून, और अल्लाह की जात जो है अल्लाह खूब जानता है जो सब कर रहे हैं, अल्लाह से अल्लाह की जात से जो लोग मुनहरिफ हैं, अल्लाह की रोशनी से मुनहरिफ हैं, वो अल्लाह से मख़फ़ी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि समझें कि अल्लाह अल्लाह को मालूम नहीं, हम जो चाहे करें वो अल्लाह को मालूम नहीं। वलिल्लाह मुल्कु समावाति वल अर्ज, और आसमानों और जमीन की सारी बादशाहत सारी मिल्कियत अल्लाह ही की है। वलिल्लाहि अल-मसीर, और सबको अल्लाह ही के पास पहुँचना है। इस हकीकत को समझो कि अल्लाह बादशाह है, पूरी कायनात का बादशाह है, मालिक है, और सारी सब उसकी मिल्क है, और सबको वहां जाना है अल्लाह के पास। तो अब तुम क्या लेके जाओगे ये समझ लो, तुम अंधेरे में रह के जाओगे या रोशनी में रह के जाओगे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह वालिमुन, अल्लाह जिसको जानता है। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्ज़ी सहाबन ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ۔ अल्लाह रमजान बोला कि एक 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 मिसाल को समझ लो, तुम्हारे सामने एक मिसाल है हक व बातिल के, अल्लाह को जानने और अल्लाह को न मानने के सिलसिले में एक मिसाल तुम्हारे सामने आती है। देखो, देखते नहीं हो कि अल्लाह ताला बादल को जलाता है, और फिर वो बादलों के दरमियान में इज्तमाहीत पैदा करता है, बादल इकट्ठा होना शुरू होते हैं, बादल मुख्तलिफ जगहों से चलते हैं, फिर वो इकट्ठा होते हैं। यानी वो चीज़ अल्लाह ताला बता रहा है जो लोगों को नजर आती है, कि तो इससे हकीकत को समझ लो कि बादल मुख्तलिफ, बादलों की टुकड़ियाँ, बादलों के वो होते हुए बादल सफेद सफेद के निकल, मैंने आसमान को मुसलसल बादल गुजरते हैं, फिर सुमय वाले हुए ना, फिर अल्लाह ताला उनमें इज्तमाहीत पैदा करता है, वो इकट्ठा होते हैं। सुमय जल रुकामन, फिर इतना इकट्ठा कर देता है अल्लाह ताला कि तह बहता है, वो एक पहाड़ सा बन जाता है। और देखा है हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक बार मख्तार जहाज पर देखा कि सामने पहाड़ नजर आ रहा है, बादलों का पहाड़। यानी यहाँ से हम बादल देखते हैं तो फैले हुए देखते हैं, फैले हुए क्या होते हैं, वो पहाड़ उसका पेंडा होता है जो हम देख रहे हैं, और पेंडे को सिर्फ देखते हैं समझते हैं बादल फैला हुआ है। बादल फैला नहीं, बादल जितना फैला हुआ है उससे बहुत ऊपर तक होता है, बिल्कुल मीनार बादल एक गुंबद और मीनार की तरह मालूम होता है, तय बतय बादल ऊपर तक। इसीलिए उसमें इतना ज्यादा पानी होता है कि जब बरसता है पानी तो फरमाता है उसमें उसको तय बहता बना देता है, फसल का यह खुद में खिलाई थी, उसमें से देखोगे कचरे और वो कचरे निकलते हैं उजनतुमिन और इस तरह अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है आसमान से पहाड़ जैसे बादल नाजिल फरमाता है और उसमें ओले भी होते हैं और ओले वैसी बिहार में यशा जैसे अम्मा यशा और उसके जरिए से अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसे गिराता है और जिसको जिसे चाहता है हटाता है। यानी ऐसा नहीं है कि बादल को अल्लाह ने भेज दिया आगे बरस के चले गए, नहीं, अल्लाह ताला बादलों को बरसाने में भी अल्लाह ताला का हुक्म चलता है, कहाँ बरसे कहाँ न बरसे, कितना ही बड़ा बादल आ रहा है लेकिन अगर अल्लाह का मंजूर नहीं तो नहीं बरसेगा, निकल जाएगा, आदमी देखता रह जाएगा। और मामूली बादल आ रहा है खूब बरस रहा है, फरमाया कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला बादल को भेजकर और उसको जमा करके इकट्ठा करके और उसमें कचरे गिराकर उन गिराने काबिल बना के छोड़ देता, नहीं, अल्लाह छोड़ता नहीं। और इससे इशारा है कि अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज में भी हुक्म चलता है उसका, जैसे कुफार ने समझ रखा है कि अल्लाह ने अल्लाह को मानते हैं कुफार मुशरिकीन भी अल्लाह को मानते हैं मगर उनका यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसने बना के छोड़ दिया, अब बाकी लोग जो खिदमतगार है उनके जिम्मे कर दिया, जैसे इंतजामिया होता है हुकूमतों का कि बादशाह जो है वो सब कुछ काम थोड़ी करता है, बादशाह अपने उसूल बना देता है, अहकाम दे देता है और बाकी जो मुंतजमीन होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, वज़रा होते हैं, वो सब चलाते हैं। तो इन काफिरों का कहना यह है कि हमें अल्लाह तक जाने की जरूरत है, हमारा काम इनसे है, हमारा फला काम फला दफ्तर में होगा, हमें उस दफ्तर में जाना है, हमें वज़ीर आज़म के पास नहीं जाना है, हमें बादशाह के पास नहीं जाना है, हमें क्लर्क के पास जाना है, हमें DM के पास जाना है। ये निज़ाम उन्होंने अल्लाह के बना रखा है लोगों ने, काफिरों ने, अल्लाह का ऐसा नहीं है, बारीक से बारीक काम भी हमारे ही हुक्म से होता है। और साथ साथ कुरान में कि तुमको जो भी बात कह जाती वो हमारे करने से होती है, कोई मामूली से मामूली बात ऐसी नहीं है जो इसने अल्लाह ने जिसको दूसरे से सबूत कर दिया हो, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। यानी अल्लाह ताला को इस तरह करना थोड़ी होता है जैसे इंसान करता है, हाथ से उठा रहा है, हाथ से रख रहा है, हाथ इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, अल्लाह ताला नूर है, बस नूर सब कुछ कर रहा है, हर चीज उस नूर ही से हो रही है, वजूद में आ रही है और चल रही है, नूर से चल रही है। अल्लाह ताला अपने नूर को हटा ले तो एकदम से वो चीज खत्म हो जाएगी। फरमाया के जिसको चाहता है अल्लाह गिराता है उसको और जिससे चाहता है हटाता है, ये काल उठाना बरकई यथोदशा, और उसमें जो चमक होती है बिजली की तो इतनी तेज होती है कि वो आंखों को जला सकती है, या आंखें ऐसी चमक होती है कि अल्लाह ताला चाहे तो आंखें फूट जाए उसको उस तेज रोशनी में। फरमाता है युकल्लिबुल्लाहु अल्लैल वन्नहार, अल्लाह ताला दिन रात में तब्दीलियां करता रहता है, पलटता रहता है, दिन आ रहा है, रात आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि एक चीज जैसे आपने एक चीज चला दी और धमकती भी चली जा रही है, ये नहीं है, अल्लाह ताला बदलता रहता है, उसमें तब्दीली भी लाता है, हालात बदलते हैं, कभी आप देखिए हुकूमतें बदलती हैं, और एक जगह दिख रहे हैं कि अल्लाह ताला इलाके को छोटा कर देता है, बड़ा कर देता है। यानी आदमी कोई आदमी के अख्तियार में नहीं है, सब अख्तियार अल्लाह का है, और अल्लाह ताला किसी चीज को बना के छोड़ नहीं दिया है, उसमें तब्दीली भी करता है, बदल देता है, देता है कभी नहीं देता, नहीं देना चाहता तो नहीं देता, और देना चाहता है तो देता है। इंसान को इसमें अख्तियार नहीं है, वो अल्लाह से मांग सकता है, छीन नहीं सकता, उसको ये अख्तियार नहीं है कि जो चाहे कर ले, वो अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला जब चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, ये अपने दिमाग में बैठा लेना कि हम कर लेंगे, इसकी तरबीत अल्लाह ताला ने कई जगह की है। فرعون کا واقعہ بتایا اور دوسرے واقعہ بتائے کہ ہم کہا کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، خبر نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، تمہارے کہنے کرنے سے نہیں ہوتا. ہاں اللہ تعالیٰ سے تم کرواؤ، یہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کیسے کرواؤ گے؟ اللہ کو تم حکم تھوڑی دے سکتے ہو، اللہ سے گزارش کرو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ کو رحم آئے گا دے گا. لیکن اللہ کا اگر رحم نہیں آیا تو تم نہیں لے سکتے، پھر اللہ سے نہیں لے سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اس سے پہلے جو آیات گزری، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بیٹھ گئے اور کشتی روانہ ہو گئی اور ایمان والے بچ گئے طوفان سے. تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہتا ہے دیکھو تم اللہ سے کہو اس بات کو، اللہ سے مانگو اے اللہ ہمیں خیریت سے پہنچا دے، اے اللہ ہمیں خیریت سے اتار دے، اے اللہ ہمیں خیریت سے. ساسا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ سے مانگو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم مانگو. اور تم اگر مستغنی بنے ہوئے ہو، شان دکھا رہے ہو تو شان دکھاؤ. تم سمجھتے ہو کہ ہمیں ملے گا، اللہ دے گا، اللہ دینے کا مجبور ہے، اللہ دینے کا مجبور نہیں. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کیوں مجبور ہے اللہ تعالیٰ؟ تم اللہ کو مانو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، اللہ بہت سخی ہے. لیکن تم تو اللہ کی طرف سے منہ پھیر لو، وہ ملے گا کیسے ملے گا؟ تم انسان سے نہیں لے سکتے. جو دے رہا ہے وہ انسان، اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے آپ کی ضرورت کی، آپ اسے اگر ٹیڑھے منہ بات کر کے دیکھیے، ملے گا، دے گا آپ کو. تو اللہ فرماتا ہے مانگو، مانگو گے تو ملے گا. یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہو کر لو گے، لے لو گے. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بدلتا بھی رہتا ہے، دن اور رات میں تبدیلی رہتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ جو ہو رہا ہے بس یہ ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا، اور ہم کو اگر قابو مل گیا ہے تو ہمیشہ قابو رہے گا. ہم بادشاہ ہو گئے ہو تو ہمیشہ بادشاہ رہو گے. تم مالک ہو گئے ہو اگر تو ہمیشہ مالک رہو گے. نہیں، اللہ چاہے گا رہو گے، نہیں رہے. اور ہوتا بھی ہے کہ آدمی بعض وقت اربعہ عرب دولت کا مالک ہو جاتا ہے، اور معلوم ہوا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ پیسے کا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے، اور واقعات برابر ہوتے ہیں کہ آدمی اوپر سے نیچے گرتا ہے گویا کہ، اور بالکل ایسے ہم واقعات ہم اخبار میں پڑھے ہیں، دیکھے بھی ہیں کہ بہت شہر سے کہ کوئی ان کو کوئی بدگمانی نہیں کر سکتا تھا، ان کو نکال بڑی حیثیت کے لوگ، لیکن کوئی بات ایسی پیش آئی کہ وہ چلے گئے، بالکل زمین پر آ گئے. تو آیا کہ اللہ بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو. ان نفیز علی گلائی برسنوری رفتار، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نظر ہو، جو نظر رکھتے ہیں حالات پر، جو دیکھتے ہیں حقائق کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے. یعنی اس سے عبرت لے سکتے ہیں کہ کس طرح نظام چل رہا ہے دنیا کا، جو دکھائی دے رہا ہے اسی پر قیاس کر کے وہ بقیہ نظام کو سمجھیں. یہ پوری کائنات پورا نظام یوں ہی نہیں چل رہا ہے، اس کا حبہ حبہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے. معمولی سے معمولی چیز اللہ کے کرنے سے ہو رہی ہے. اور قرآن میں اس کی مثالیں بھی دی گئی ہے کہ کس طرح اللہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو اللہ کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرتا وہ ہے، انسان کے بل اس کا رحم اتنا ہے کہ انسان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. اور آتا بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو تمہیں پانی نہ ملے پینے کو. جو کچھ تم کو مل رہا ہے اللہ دے رہا ہے، مل رہا ہے. تو فرمایا کہ اس سے عبرت حاصل کرو. یہ جو مثال دی گئی ہے اور جو نظام چل رہا ہے جو تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بھی دے دی بادل کی مثال کی, بادل کو تم سمجھتے ہو کہ آ کے برس کے اتفاقاً چلا گیا, کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہے. جو بارش ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اور کروائی ہوئی, اللہ نے اتنا بادل بھیجا جتنا بادل وہ چاہتا تھا بھیجنا, اور اس کو جہاں برسانا چاہتا تھا وہاں برسایا, اور بادل کو اسی حساب سے اللہ نے بنایا, سب آخر تک اللہ نے کیا. جہاں واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے آواز سنی کہ بادلوں کو پھلا جگہ جاؤ, وہ انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ہے یہ, تو وہ بادلوں کے پیچھے پیچھے گئے, ایک گاؤں میں پہنچے, ایک بستی میں پہنچے, وہاں دیکھا کہ بادل برسا اور خاص جگہوں پر برسا, تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہاں کون لوگ رہتے ہیں کیا رہتے ہیں. یہ حدیث ہی میں آتا ہے, تو ایک شخص ملا اللہ والا, جو اسے پوچھا کیا تم معلوم تھا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بادل لے جا, کسان تھا, کیا تم کیا کرتے ہو, کس طرح اللہ کی بات کریں, ہم کوئی بات وغیرہ نہیں ہے, معمولی آدمی ہیں, لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پیداوار ہوتی ہے ہمارے کھیتوں سے اس کے ہم تین حصے کرتے ہیں, ایک حصہ تو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم اگلی فصل میں بونے کے لیے بیج کے طور پر رکھ لیتے ہیں, اور تیسرا حصہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں. کیونکہ یہی بات ہے, جب تم اللہ کے راہ میں اب ایک تہائی اپنی آمدنی صرف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی بادل تمہیں بھیجتا ہے تاکہ تمہاری کھیتی اچھی ہو. اس طرح اور واقعات ہیں, آپ سورہ کہف میں دیکھیے واقعات, موسیٰ علیہ السلام کا کشتی کو توڑ دیا انہوں نے, ایک لڑکے کو مار دیا, ایک دیوار کو ٹھیک کر دیا, یہ اللہ کے حکم سے کیا, چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچاتا تھوڑی ہے کہ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے تم خود سمجھو اس کو, اگر تمہاری نظر ہے اگر تمہیں بصیرت ہے کچھ بھی تو تم دیکھو کہ جو نظام چل رہا ہے کتنا منظم نظام ہے, یہ کسی کے چلائے وغیرہ کیسے چل سکتا ہے, خود بخود چل سکتا ہے, اور ساری مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں, تم جو ہے تم اپنے اندھیروں پر اندھیروں میں رہ کر سمجھتے ہو کہ ہم اپنے اندازے سے کام کر لیں گے, اس کے پیچھے اس کے سامنے سر جھکا رہے ہو, اس کے سامنے سر جھکا رہے ہو, اس کو پوچھ رہے ہو, اس سے مانگ رہے ہو, اور اللہ کو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے, سمجھتے ہو کہ اللہ تو ریٹائر ہو گیا. اللہ خلق کل دابۃ من ماء, اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمین سے چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا, یہ اللہ بتاتا ہے کہ ہم نے ساری مخلوقات کو پانی سے بنایا, ظاہر ہے انسان کی تفصیل تو اللہ نے بتائی ہے کہ پانی کا چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے, اسی سے ترقی کر کے انسان بنتا ہے, اور بعد میں بھی آدمی پانی پی کر ہی اس کی صحت قائم رہتی ہے, کہ پانی نہ ملے اس کو تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا, سارا جسم جو ہے پانی کے ذریعے سے بنتا ہے اور ترقی کرتا ہے, زندہ رہتا ہے, یہ سارے پودے اور سارے درخت اور ساری کھیتیاں یہ سب پانی سے چل رہی ہیں, بارش نہ ہو تو کھیتیاں خشک ہو جائیں گی اور غلہ پیدا ہونا بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ نے جو جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے, وہ مینو میم کی علاوہ میں بعض ایسی ہیں کہ جو پیٹ کے بل جلتی ہیں, جیسے سانپ ہے اور اس کا وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں, امین و میم کی اللہ رجلیں, بعض ہیں جو دو پیروں پہ چلتے ہیں جیسے انسان ہیں, امین و میم کی اللہ اربا, بعض چار پیروں پہ چلتے ہیں جیسے چوپائے ہیں, اللہ یخلق اللہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, اس کی اپنی مرضی سے کرتا ہے جو کچھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز اس کی قدرت میں ہے, کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم, हमने खुली बात को वादे कर देने वाली खूब अचार कर जाहिर नुमाया बुलाया और बयान कर दी है बातें, निशानियां ऐसी पेश कर दी हैं कि जो खोल कर बयान कर रही हैं हकायक को, वल्लाहु यहदी मन यशाउ। लेकिन हिदायत जिसको मिलती है उसको मिलती है, जिसको नहीं मिलती नहीं मिलती। अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की, वो उसके बाद अल्लाह ताला मुनाफिकीन का हाल बयान करता है कि एक तबका ये तो ईमान और कुफर वालों का तबका हो गया कि जो अल्लाह की रोशनी से फायदा नहीं उठाते, वो अल्लाह की रोशनी से फायदा उठाते हैं। ये दो किस्म हुई। एक किस्म और है कि जो न मुसलमान है ना मुस्लिम है, यानी ईमान लाए हैं और मुसलमानों के साथ हैं और अपने को मुसलमान कहते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से ईमान नहीं है, अंदर से ईमान नहीं है। मौका पाएंगे तो भटक जाएंगे, लेकिन वो यकीन नहीं रखते अल्लाह पर। उनका तस्करा आयात में आता है, वो बाद में आएंगे। वाकई